रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। हवेली की ऊंची दीवारों के बाहर हवा ठंडी हो चली थी। आंगन के दिए अब बस मध्यम झिलमिला रहे थे और अंदर उस कमरे में दो लोग थे जो एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे पर चुप रहने को ही आसान मान बैठे थे। श्यामली धीरे धीरे कमरे को ठीक कर रही थी। टेबल पर रखे कागज, कुर्सी की सीधी पीठ और अब बेड की चादर। उसकी हर हरकत में वो सलीका था जो आदत नहीं मजबूरी से आया हो। वो झुकी हुई चादर बिछा रही थी। बालों की कुछ लटें बार बार चेहरे पर गिरती और वो हर बार उन्हें पीछे सरकाती पर हवा जैसे जानबूझकर उन्हें फिर आगे ला देती थी। उसका सफ़ेद सूती कुर्ता हल्की रोशनी में पारदर्शी सा लग रहा था और ब्रेसलेट की चमक उसकी कलाई पर हल्के से झिलमिला रही थी। कमरे में बस वही एक धातु की चमक थी जो बार बार विश्वनाथ की नज़र में आकर ठहर जाती। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, विश्वनाथ बाहर आया। बाल अब भी गीले, चेहरा ताज़ा पर आंखों में वही सख्त अडिग भाव। वो कुछ पल बस खड़ा रहा फिर धीरे से कमरे में चला आया। उसकी चाल शांत थी मगर भारी, जैसे हर कदम एक आदेश की तरह गूंजता हो। वो सीधे अलमारी के पास गया, शर्ट का कॉलर सीधा किया, फिर अनजाने में नज़र आईने में अपनी श्यामली पर टिक गई। वो झुकी हुई थी पर उसकी हर हरकत में एक अजीब सादगी थी जो किसी को भी पल भर के लिए रोक दे। विश्वनाथ ने आंखें हटा ली। ध्यान भटकाने की चीज़ मत देखो, मन में खुद को टोका। लेकिन अगले ही पल जब उसने उसे ब्रेसलेट ठीक करते देखा, वो ब्रेसलेट जो उसने दिया था, तो भीतर कुछ बहुत धीमे से मुस्कराया। फिर उसी पल उसने खुद को सख्त कर लिया। इतनी देर तक जागने की जरूरत नहीं थी, उसकी आवाज आई ठंडी सपाट। श्यामली थोड़ी सकपक आ गई। जी बस बेड ठीक कर रही थी। सुबह के लिए कर लेती, विश्वनाथ ने बेड के कोने की ओर देखते हुए कहा। अब इतनी रात को ये सब करने से क्या मिलेगा? उसकी बात में कोई गुस्सा नहीं था पर लहजा ऐसा था जैसे हर बात को औपचारिक बनाना जरूरी हो। श्यामली चुप रही, बस हल्की आवाज में बोली, आदत है। विश्वनाथ ने एक पल उसे देखा। उसकी झुकी हुई आंखों में डर था पर साथ ही एक शांत गरिमा भी। वो कुछ कहने वाला था मगर फिर बस इतना बोला, अगली बार इतनी देर तक मत जागना। वो सोफे की ओर बढ़ा, टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट भरा और तभी नज़र अनजाने में फिर उसी पर टिक गई। श्यामली अब बिस्तर के पास झुककर तकिया सीधा कर रही थी। लैंप की हल्की रोशनी उसके बालों पर पड़ रही थी। उनमें कुछ बूंदें अटकी थीं, शायद बाल धोने के बाद ठीक से सूखे नहीं थे। वो दृश्य इतना शांत और कोमल था कि विश्वनाथ की सांस कुछ पल के लिए रुक सी गई। ये लड़की, उसने मन में सोचा, कितनी अलग है, ना बोलती ज़्यादा ना दिखावा करती, फिर भी पता नहीं क्यों कमरे में बस वही नज़र आती है। वो कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा, फिर खुद को झटका दिया और खुरदुरी आवाज में कहा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। श्यामली पलटी, जी, बस इतना कहा और उसकी नज़र एक पल को ब्रेसलेट पर पड़ी। वो धीरे से बोली, वो जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। विश्वनाथ का चेहरा एक पल को नरम पड़ा पर उसने जल्दी से नजरें फेर ली। कहने की जरूरत नहीं, उसका स्वर अब फिर वही ठंडा था, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी, शायद अपनी सच्ची कृतज्ञता जताना, पर उसने बात काट दी। श्यामली, मैंने कहा ना, अब सो जाओ। वो चुप हो गई, सिर झुकाया, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी उंगलियां ब्रेसलेट को हल्के से छू रही थीं, जैसे दिल से कह रही हूं, कितना भी सख्त लहजा हो पर इसमें छुपे एक अच्छे इंसान को मैं महसूस करती हूँ। विश्वनाथ ने खिड़की की ओर देखा। बाहर रात ठंडी और गहरी थी। वो कुछ कहना चाहता था पर खुद से लड़ रहा था। क्यों जरूरी है इतना रूखा रहना, मन में सवाल उठा, फिर तुरंत जवाब आया, क्योंकि अगर नरम पड़ा तो खुद को खो दूंगा। उसने करवट बदली, बिस्तर की तरफ चला गया। बेड के पास पहुंचा तो श्यामली ने थोड़ा किनारा किया। वो हमेशा की तरह चुपचाप लेट गया पर नींद बहुत दूर थी। दोनों के बीच बस एक हथेली का फासला था पर उस फासले में बहुत कुछ था, डर, दूरी और अनकहे जज्बात। श्यामली ने आंखें बंद की पर उसे महसूस हुआ विश्वनाथ अब भी उसे देख रहा है। वो नज़र जो कहती तो कुछ नहीं पर सब बयां कर देती है। विश्वनाथ ने धीरे से गहरी सांस ली। उसके अंदर खींचतान थी। दिल कहता था, कह दो कि वो खूबसूरत है। दिमाग कहता था, मत कहो, नहीं तो सब टूट जाएगा। उसने आखिरकार आंखें बंद कर ली पर दिमाग में बार बार वही एक छवि घूम रही थी, उसकी कोमल उंगलियां, झुकी पलकें और वो मासूम थैंक यू। उसके अंदर एक हल्की टीस उठी जो प्यार जैसी थी पर नाम देने की हिम्मत नहीं थी। वो धीमे से बुदबुदाया, बेहतर होगा, वो मुझसे दूर ही रहे, पर दिल ने उसी पल जवाब दिया, और अगर वो दूर चली गई तो? बाहर खामोश हवेली के बीच उस कमरे में अब दो लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, एक जो अपने डर से भाग रहा था और एक जो अपने डर के बावजूद वहीं टिके रहने की हिम्मत जुटा रही थी। लैंप की रोशनी अब फीकी पड़ चुकी थी, पर शामली की कलाई पर चमकता वो ब्रेसलेट अब भी कमरे का सबसे जिंदा हिस्सा था, जैसे दोनों के बीच का एकमात्र रिश्ता जो ना कहा गया था ना तोड़ा जा सकता था। सुबह का आसमान हल्का सुनहरा हो उठा था। हवेली की गलियों में अब नौकरों की आवाजें गूंजने लगी थीं। कमरे के बाहर ताज़ा फूलों की खुशबू और अंदर वो अजीब सी खामोशी जिसमें रात की बातें अब भी ठहरी हुई थीं। विश्वनाथ ने हमेशा की तरह समय से उठकर नहाया, काला सूट पहना, घड़ी कलाई पर बांधी और टाई के नॉट को सीधा किया। आईने में चेहरा वही था, सख्त स्थिर, लेकिन आंखों के नीचे हल्की थकान की लकीरें थीं। शामली पर्दे के पीछे से झांक रही थी। वो देख रही थी कैसे वो हर चीज को नाप तोल कर बिना किसी गलती के करता है। उसकी चाल में रौब था, पर कदमों में कहीं कोई थकावट भी। चाय रखती है टेबल पर, उसने धीरे से कहा जब वो कोट उठा रहा था। विश्वनाथ ने सिर हिलाया बिना उसकी तरफ देखे, फिर एक पल ठिठका। वो कोट कल रात वही था जिसमें वो गिफ्ट रखा था। उसने कोट पहना, जेब पर हाथ रखा जैसे कुछ याद आया, पर चुप रहा। बस हल्के से बोला, ध्यान रखना हवेली का। जी, शामली ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में आदर था, मगर कहीं गहराई में एक अनकही उम्मीद थी। विश्वनाथ दरवाजे तक पहुंचा, रुका नहीं, बस पीछे मुड़कर एक पल देखा। वो खड़ी थी सादगी से, बिना मस्कान के, पर उसकी आंखों में वही नरम उजाला था जो सुबह की पहली किरणों में होता है। वो बिना कुछ बोले निकल गया। गाड़ी की आवाज गूंजी और हवेली फिर खामोश हो गई। शामली ने धीरे से दरवाजा बंद किया, टेबल पर रखे अधूरे चाय के कप को देखा और बहुत धीमे से मुस्कुराई। इतना सख्त भी नहीं जितना दिखते हैं।